अध्यात्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संसार और देह पूरी की पूरी ईश्वर हुक्म में चल रही है, जिसको हम प्रारब्ध भी कहते हैं। जिसको महर्षि रमण बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि जिन कार्य को करने के लिए ये देह पैदा हुई है, वो सारे कार्य इस देह से होंगे। तुम चाहो या ना चाहो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसका मतलब है, जो कर्म मेरे द्वारा हो रहे हैं या जो कर्म मेरे चाहते हुए भी मेरे द्वारा नहीं हो पा रहे हैं, इन दोनों का कारणकर्ता प्रभु स्वयं है। जीव इसका कारणकर्ता नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को देह से मिला देता हूं, मैं अपने आप को देह करके समझता हूं, इसलिए सारे निर्णय हमारे उल्टे हो जाते हैं, सारी बात हमारी समझ में आती नहीं। गीता में भी कहा गया, कर्मणे बाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार होवे, फल में कदापि नहीं। तो वहां भी अधिकार की बात इसलिए कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं स्वतंत्र हूं। अधिकार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं जिस स्थिति में खड़ा हूं, उस स्थिति में मेरे अंदर ये विश्वास है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं और जो ना चाहूं मैं नहीं कर सकता। इस स्थिति से मैं जब आगे बढ़ूंगा, तब गीता का सिद्धांत, गीते की आज्ञा बदल जाएगी। फिर उसी गीता में आपके लिए कुछ और कहा जाएगा, क्योंकि ये दूसरे अध्याय में ही बात आ गई, तो प्रारंभिक गीता का दूसरे अध्याय से हुआ है, पहले में तो है ही कुछ नहीं। तो मेरी स्थिति के अनुसार शास्त्र और सत्पुरुष हमको गाइड करते हैं। तो इसलिए आज मैं जहां खड़ा हूं, मेरे अंदर कर्तापन स्ट्रांग है कि मैं करने वाला हूं और मैं करने में स्वतंत्र हूं, जो चाहे कर सकता हूं। तो इसीलिए हमको हुक्म दिया जाता है, शास्त्र हमको गाइड करते हैं, क्या आपने करना है, क्या नहीं करना है, क्या ठीक है, क्या गलत है, किस सोच से, किस कर्म से तेरा विकास होगा, अर्थात विकास का मतलब है आध्यात्मिक, तू ईश्वर की तरफ जाएगा, और किस कर्म, किस सोच से तू ईश्वर से दूर होता चला जाएगा, अर्थात संसार के चक्र में फंसता चला जाएगा। तो बड़ा स्पष्ट निर्देश है, लेकिन जब बात आखिर में पहुंचती है, अर्थात हमारे अंदर ईश्वर निश्चय पक्का हो जाता है और हम ईश्वर के लिए ही जीते हैं, हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है और जो होना ना होना सब प्रभु हुक्म में देखते हैं, तब हमारे लिए एक बात कही जाती है, कारण कर्ता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया रहो चरण तिसला। तो जो समाधि में प्रवेश कर गया, जिसकी ये हालत है भक्ति की, तो समाधि तो टूटती है उसकी भी, समाधि टूटेगी फिर हमारे जैसे ही इंसान है वो, लेकिन कर्म में उसकी कोई रुचि नहीं है। ऐसे व्यक्ति कर्म में रुचि क्यों नहीं होती, क्योंकि वासना से पहले ही वो ऊपर उठ चुका है, तभी समाधि में प्रवेश किया उसने, लेकिन कर्तापन उसके अंदर अभी भी है, कर्तापन उसका खत्म नहीं हुआ, नहीं तो फिर वो खुद ईश्वर ही है, ईश्वर के अलावा अन्य वो कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सत्पुरुष को ब्रह्म कह देते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो परब्रह्म और गुरु में तो कोई भेद नहीं है। तो जब तक हमारे अंदर कर्तापन है, तब तक भेद है। तो ये कर्तापन टूटे कैसे, तो इसीलिए जो इतना आगे बढ़ गया कि अब ईश्वर के साथ एक होने में कोई बीच में बाधा नहीं है, बस एक बारीक सा पर्दा है जिसको अहंकार, मूल अहम बोलते हैं या कर्तापन बोलते हैं, डूअरशिप बोलते हैं, वो अभी बाकी है। तो उसके लिए फिर हुक्म है, सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो यही सार है ज्ञान। तो उसने अकर्ता होना होता है, लेकिन देह प्रारत्याधीन है तो कर्म तो रोक नहीं सकता, क्योंकि वो तो अंतर्यामी ईश्वर ही चला रहा है देह को, वो जीवन शक्ति ही चला रही है, तेरे बस में नहीं है ये। तो अहंकार तो कर सकता है मैं नहीं करूंगा, लेकिन तेरे बस में नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं वो परिस्थितियां तेरे सामने पैदा हो जाएंगी कि तुझको मजबूर होकर युद्ध करना पड़ेगा, तू अपने को रोक नहीं पाएगा, इसलिए तू ये मत कहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तेरे प्रारब्ध में है युद्ध करना, ये युद्ध तो होकर रहेगा, ये निश्चित हो चुका है। तो इसीलिए भक्तों को एक ही आज्ञा होती है फिर कि भाई जो कुछ परोपकारी कर्म है, लोक कल्याण का कर्म है, वो तो निष्काम रूप में करने कर। निष्काम का मतलब क्या होता है कि उसका जो परिणाम निकलने वाला है उससे तेरा कोई वास्ता नहीं। जब कर्म करेगा तो दिमाग से सोचेगा तो जरूर, तो ऐसा व्यक्ति तो परोपकारी कर्म करने की सोचेगा, स्वार्थ कर्म क्या करेगा। तो उसमें भी वो कहते हैं कि जो कुछ भी परिणाम निकलता है, हो सकता है उलट भी निकल जाए परिणाम। तो इसीलिए उस परिणाम को तू ईश्वर की इच्छा समझ, प्रभु जो आपने परिणाम दिया था वो दे दिया, और इसके साथ ही कुछ कर्म करने चला तो तुझसे नहीं बन पाया, तेरे अंदर मलाल भी हो सकता है उस समय कि मैंने इतनी कोशिश की और वो हो नहीं पाया। तो होना ना होना भी तो उसकी हुक्म में देख, क्योंकि करने कराने वाला वही है, सकल जगत का करता है, तो मैं अलग थोड़ा गया हो गया उससे, मैं जगत में ही तो हूं। तो इसीलिए जो फाइनल छलांग लगाने वाला है उसके लिए दोनों ही बातें, दोनों हुक्म है फिर कि तुझसे कर्म कोई बन पाता है या नहीं, नहीं बन पाता है वो भी उसका हुक्म समझ, मन अनुकूल परिणाम निकल पाता है या नहीं निकल पाता है, बड़ी तूने मेहनत की थी और सब निरर्थक चली गई। जैसे कि आप देखिए गंगोठिया में महाजी जब थे तो वहां बड़ी एडवर्स कंडीशंस थी किसी कॉन्स्ट्रक्शन को करने के लिए, अंग्रेजों का राज्य था और हर चीज पे तो परमिट लेना पड़ता था, सीमेंट पे परमिट, ईंटों पे परमिट, हर चीज पे परमिट होता था उस टाइम, हर चीज पे कंट्रोल था। तो प्रेमियों ने बड़ी मुश्किल से, और ऊंची नीचे जमीन थी वो सब गांव की, बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो जमीन समतल करके आश्रम निर्माण किया था। अब देखिए एक सत्पुरुष का वो घर है, घर के पास वो जमीन है और जमीन में आश्रम बनना है, आश्रम बन के तैयार हुआ, उसके बाद सम्मेलन हुआ, तो उसके बाद जो है ये पार्टीशन की तैयारी हो गई हिंदुस्तान पाकिस्तान की, वो सारा आश्रम वहीं रह गया। तो आप कहोगे सत्पुरुष तो त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्होंने रोका क्यों नहीं, सत्पुरुष तो त्रिकालदर्शी होते हैं उन्होंने रोका क्यों नहीं, वो कह सकते थे भाई ये स्थान तो उजड़ने वाला है, ये रचना मत रचो। ये माँ जी खुद कहते थे कि सत्पुरुष कभी प्रकृति के कार्यों में दखल नहीं देते, वो हमेशा उसकी हुक्म में रहते हैं। सत्पुरुष के अंदर कोई वासना नहीं होती, उसके अंदर कर्तापन भी नहीं होता, यदि सत्पुरुष है तो उसमें कर्तापन भी नहीं होगा, सत्पुरुष बन नहीं सकता हो। तो जिसमें कर्तापन ही नहीं है उसमें कर्म करने का संकल्प कैसे पैदा होगा। लेकिन प्रारब्ध सत्पुरुष के शरीर का भी होता है, क्योंकि शरीर तो है उसका, दिखाई पड़ रहा। तो इसलिए महा जी कहते थे प्रेमी अंदर कोई संकल्प उठता नहीं है, यदि उठ जाए तो ये तुरंत उसको पूरा कर दे। किसी प्रेमी ने पूछा, महाराज जी उस समय यदि बाढ़ आई हुई हो और आपके अंदर संकल्प उठ जाए मैंने ये नदी पार करनी है, तो क्या करेंगे आप? देखिए लोग कैसे कैसे प्रश्न कर देते सत्पुरुषों से। तो उन्होंने कहा, प्रेमी यदि संकल्प आ गया तो नदी में पैर डाल देंगे। तो बोला, महाराज जी फिर तो आप बह जाएंगे, कोई बात नहीं, शरीर खत्म हो जाएगा। तो देखिए वो जानते हैं कि संकल्प उठने का मतलब है कि उससे उसने उठाया है संकल्प, उसने इस देह से करनी करनी है कुछ। तो इसीलिए मन को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं और देह को स्थूल शरीर बोलते हैं। तो मन देह ये एक साथ चलती है, अलग अलग कभी नहीं रहती। ये नहीं कि मन अलग हो जाएगा देह अलग हो जाएगी। इसीलिए जिस समय आपका मौत का वक्त आता है, मौत होने वाली होती है, उस समय आपकी जो शारीरिक स्थिति क्या होती है, जो योग विद्या है वो कहती है कि मन जो है वो प्राण में प्रवेश कर जाता है और प्राण जो है वो कुंडली में प्रवेश कर जाता है और कुंडली वो मूल स्थान है जहाँ जीव मरते वक्त निवास करता है, वो ईश्वर सत्ता ही है। तो देह तो आपकी मर गई, ये तो जला दी गई, लेकिन मन आपका सुरक्षित है, सूक्ष्म शरीर सुरक्षित है। इसीलिए बीच में बिना किसी टाइम गैप के, एक फ्रैक्शन का भी गैप नहीं होता, उसी कुंडलनी शक्ति से आपका सारी मशीनरी, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपका प्राण सब नए शरीर की रचना ऐसे कर लेता है जैसे आपने इधर नींद लगी उधर स्वप्न की रचना हुई। तो स्वप्न की रचना होते ही इतने सारे शरीर तैयार हो गए, इतना बड़ा संसार तैयार हो गया और आप उसमें सुख भी भोग रहे हो, दुख भी भोग रहे हो, कर्म भी कर रहे हो, पश्चाताप भी कर रहे हो, खुश भी हो रहे हो, सब हो रहा है। लेकिन जब जागते हो तो कहते हो वो तो स्वप्न की रचना थी, वो तो कल्पना थी। तो मैं सोचने को तैयार नहीं हूँ, कल्पना थी, तो मैं सुख भी तो महसूस कर रहा था, मैं दुख भी तो महसूस कर रहा था, कर्म भी तो कर रहा था, लोग भी तो थे, उनको पहचानता भी तो था मैं। तो इस संसार में उस संसार में अंतर क्या है? एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। सत्पुरुष कहते हैं कि सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल। जैसे स्वप्न की रचना है ऐसे ही संसार की रचना है। जब तू आत्मा में जागेगा, अंतर्गत उस ईश्वर सत्ता में जागेगा, अर्थात तो उस सत्ता का बोध होगा, उस समय यह सब कल्पना भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए सत्पुरुष को वहम नहीं होता, जो भक्त है उसको भी वहम नहीं होता। तो भक्त जो ईश्वर साथ एक होने वाला है वो समाधि का मालिक है। समाधि से जागृत होता है तब उसको पता होता है कैसे संकल्प उठाता, कैसे ये रचना सामने आ गई। हम तो सो जाते हैं, समाधि में सोने वाली ही कंडीशन होती है, लेकिन सोने का हमको बोध है क्या? नींद कैसी थी मैं बता सकता हूं किसी को? एक रिलैक्स हो जाते हो आप कि गहरी नींद आ गई तो रिलैक्स हो गए। स्वप्न में रिलैक्सेशन नहीं होता क्योंकि ब्रेन काम करता रहता है, लेकिन गहरी नींद में जिसको सुषुप्ति बोलते हैं उसमें बड़ा रिलैक्सेशन होता है, सारी मशीनरी हमारी एकदम जो रेनी हो जाती है अगले दिन काम करने के लिए। तो सत्पुरुष को या उस भक्त को जो समाधि में है उसको होश बना हुआ है, मेरी गहरी निद्रा की अवस्था है, वहां मेरे भी कोई संकल्प नहीं है लेकिन मुझको होश नहीं है उसका। तो उस गहरी नींद में यदि मेरा भी होश बना रहे तो फिर वो समाधि। तो इसीलिए जो समाधि में प्रवेश कर गया वो जानता है कि एक मन में एक संकल्प का भी उठना कितना बड़ा बोझ है और उस संकल्प को कार्य में बदलना कितना बड़ा बोझ है। इसीलिए उसकी प्रभु से, अंतर्यामी प्रभु से एक ही प्रार्थना होती है, एक ही इसके अंदर डिजायर उठती है कि प्रभु इस मन को तो लीन कर, ये मन की सत्ता को ही तो खत्म कर दे। तो बताइए एक संकल्प भी उस भक्त के लिए कितनी बड़ी चीज है। और हम जब सिमरन करने बैठते हैं तो संकल्पों की बाढ़ आती है, जैसे समुद्र के किनारे खड़े हों तो लहर जो है नॉन स्टॉप चलती हैं, कभी बंद नहीं होंगी। आप 10 साल खड़े रहो, 100 साल खड़े रहो, वो लहर बंद नहीं होगी। यही हमारा हाल है कि प्रभु की याद करने बैठे हैं, प्रेम से मंत्र का जाप करने बैठे हैं, लेकिन मन है कि मानता ही। तो बताइए कि मेरी बीमारी कितनी गहरी है। तो सत्पुरुष इसीलिए शास्त्र के रूप में सारा विज्ञान हमको बताकर जाते हैं। ये आपको बायोलॉजी और साइंस नहीं बताएगी, वो तो जो स्थूल शरीर है इसका विज्ञान समझा देगी, लेकिन सूक्ष्म शरीर है उसका विज्ञान कैसे समझाएगी। कि मैं तो पूरी तरह से अपने ही सूक्ष्म शरीर में सुरक्षित रहता हूं, और मेरा सूक्ष्म शरीर प्राण में सुरक्षित रहता है, और प्राण वो है जो कुंडलनी शक्ति में सुरक्षित रहता है, जिसको रामकुछ परम काली माँ कहते थे। उसको काली माँ कह रहे हैं, वो अंदर है, वो बाहर नहीं है। वो कुल कुंडलनी माँ, तू नित्यानंद स्वरूप नहीं, तू नित्य आनंद स्वरूप है। प्रसुप्त भुजंगाकारा आधार पद्म निवासनी, ओ कुल कुंडलनी माँ, तू आधार पद्म में निवास करती है, अर्थात मूलाधार चक्र में निवास करती है। प्रसुप्त भुजंगाकारा, वहां तू प्रसुप्त रूप में सुप्तावस्था में तू वहां निवास कर रही है। तू भुजंगाकार है, भुजंग कैसे है? सर्प को भी बोलते हैं, भुजंग काले को भी बोलते हैं। तू काली है, काली क्यों है? वो जहां ना नाम है ना रूप है तो काली तो हो गया। वह तो कुंडलनी वो है जो नाम रूप को खत्म कर देती है, और संकल्प उठता है वो नाम रूप का ही उठता है मन के अंदर। इसीलिए जब समय आपका संकल्प उठना बंद हो जाए, इसका मतलब आपके पूरे शरीर में केवल काली का निवास है। यहाँ सॉलिड आपका शरीर है ही नहीं, इसकी सॉलिडनेस ही उस अनुभव में खत्म हो जाती है। उस समय योग के ये निर्णय होते हैं कि अंदर ईश्वर के अलावा दूसरी सत्ता ही नहीं, फिर बाहर भी उसकी आंख खुलती है तो आंख भी केवल वही देखती है, हर वस्तु के अंदर वही मौजूद है। वहां जाके पता रहता है कण कण में वो ईश्वर कैसे विराजमान है। सारा जो जगत है वो ब्रह्म रूप कैसे है? सब जग रूप ब्रह्म का भेद भ्रम ना कोई। वाणी क्या कह रही है? देखो, सब जग रूप ब्रह्म का है तो मुझे तो नाम रूप दिखाई पड़ रहा है। तो जिस प्रकार स्वप्न का निर्णय हम जागृत होकर कर रहे हैं कि वो भ्रम था, वो भ्रम था, ये सत्य है। सत्पुरुष कह रहे हैं ये भी भ्रम है, सत्य वो है जहां ना नाम है ना रूप है, जहां केवल आनंद है, केवल शांति है, इसलिए उसको अद्वैत कहते हैं। वही है, एक नहीं कहते उसको, वही है। एक है तो दो भी होंगे फिर। एक जो चीज होती है वो लिमिटेड होती है, सीमा होती है उसकी, और ईश्वर सीमा रहित है। जब सीमा रहित है इसलिए वो आकार रहित है, इसलिए वो निराकार है। जो असली ईश्वर है वो निराकार है, जो आपका माना हुआ ईश्वर है उसका आकार है। जैसे किसी का कृष्ण जो है वो ईश्वर है, तो ईश्वर जो है कृष्ण जैसा है या कृष्ण ही है, तो ये सीमा तो तेरी टूटेगी। तुझे कृष्ण के 1,00,000 बार भी दर्शन हो जाए, तेरी मन की बेचैनी खत्म नहीं होगी। दर्शन तो हो जाएंगे, तेरे मन का संकल्प तो पूरा हो रहा है, लेकिन मन को चैन नहीं आएगा। इसीलिए महर्षि रमण के एक शिष्य हुए पंजाब के, वो जब उनकी 6 वर्ष की आयु थी तब से उनको कृष्ण के दर्शन होते थे। पूर्वजन के संस्कार होंगे उनके, कुछ कृष्ण की भक्ति की होगी उन्होंने, साकार उपासना की होगी, तो संस्कार तो मन में मौजूद है, मन तो वही आया है पुनर्जन्म में, इसलिए उनको कृष्ण के दर्शन होते थे। खैर, वो प्रारब्ध जैसा था मिलिट्री में भर्ती हो गए। मिलिट्री में जहाँ भी ड्यूटी होती थी वहाँ भी कृष्ण को दिखाई पड़ते थे। तो उनके मन के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी कि कृष्ण के दर्शन होते हैं मुझको, लेकिन मन की बेचैनी मेरी खत्म नहीं होती। तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया मिलिट्री से और इस खोज में लगे रहे कोई ऐसा गुरु मिले मुझे जिसने ईश्वर को जाना हो और मेरी इस समस्या का भी समाधान निकाले। एक दिन की बात है, वो घर में बैठे हुए थे लंच का वक्त था, जैसे ही बैठे बाहर किसी ने आवाज़ लगाई तो पत्नी से कहा भाई इसको अंदर बुला लो। वो अंदर आया तो वो सन्यासी ही था, तो प्रार्थना करी उन्होंने कि आप जो है भोजन कीजिए। खैर वो भी भोजन करने बैठ गए तो मिस्टर पुंज नाम था इनका, तो ये बोले जब भोजन खत्म हो गया तो उनसे उन्होंने सवाल किया कि आप किसी ऐसे साधु को जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने ईश्वर देखा हो? बोले हाँ मैं जानता हूँ, एक साधु है, वो तिरुवन्नमलाई में है जो चेन्नई से करीब 200 किलोमीटर दूर है, वहाँ वो अरुणाचल हिल पर रहता है। अच्छा, खैर वो चला गया उसके बाद। वो तो अब इन्होंने सोचा कि मन के अंदर बड़ी तीव्र इच्छा थी क्योंकि बचपन से जो उसके उनके सामने क्वेश्चन रहा हो, अब साल होने का मौका आया है तो तीव्र इच्छा कितनी तीव्र, इच्छा कितनी तीव्र होगी आप कल्पना कर सकते हो। तो लेकिन देखा कि उनके पास पैसे ही नहीं है चेन्नई जाने के लिए, इतने पैसे नहीं। अब देखो प्रभु की लीला, उनके पास पोस्टमैन आता है और लेटर देता है, लिफाफा खोलते हैं तो उसमें चेन्नई जाने का चेक भी है और साथ में सर्विस ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मिलिट्री वालों को मिल जाती है, एक्स सर्विसमैन को जॉब मिल जाती है ज्वाइन करने के लिए, वो भी था लेटर भी। खैर उन्होंने अपना बेडिंग तैयार किया और चेन्नई चले गए। जब उतरे वहाँ पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना पहले उस साधु से मिल लिया जाए और बाद में सर्विस ज्वाइन करेंगे। खैर वो बेडिंग के साथ वो रमणाश्रम में पहुँच गए और बेडिंग रखा उन्होंने, पूछा तो जिस रूम में वो बैठते थे उस रूम में वो एंटर हुए। जैसे ही एंटर हुए तो क्या देखते हैं कि वहाँ वही व्यक्ति बैठा है जो घर पे आया था उनके। तो उसको देख के उनके मन के अंदर एक कल्पना आई कि ये तो कोई चालाक साधु लगता है जो पहले अपना एडवर्टाइजमेंट करता है और फिर जब आदमी को जाता है तो पहले से विराजमान हो जाता है। तो ऐसा डाउट आ जाएगा तो आदमी कहाँ बैठेगा उसके पास। वो बाहर आए, अपना बैडिंग उठाया, चलने लगे। तो चलने लगे तो किसी उनके वहाँ उनके किसी कोई या तो आश्रम का मुलाजिम होगा या उनका कोई सेवक होगा, उसने देखा तो उसने उनको बात की, आप अभी अभी आए थे लेकिन अभी आप वापस जा रहे हैं, क्या बात है, महर्षि साहब की बातचीत नहीं हुई? तो उसने सारा बात बता दी। तो उन्होंने कहा कि महर्षि 17 वर्ष की आयु से यहाँ रह रहे हैं, आज तक कहीं गए नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है, आपको कोई ना कोई भ्रम जरूर हुआ है, चलिए मैं आपको मिलाता हूँ। खैर दोबारा बैडिंग रखा उन्होंने, मिलने चल दिए। जब मिलने चले तो फिर बातचीत हुई, तो महर्षि जो बताते थे गाइड करते थे उन्होंने उसको गाइड किया। इन द मीन टाइम शाम का वक्त हो गया, शाम को महर्षि उसी पहाड़ी पर टहलने जाते थे तो वो लोग टहलने से चले गए, तो मिस्टर पुंज भी अपने टहलने चले गए। तो वापस आए तो फिर आमने सामने बैठे, तो पुंज ने कहा कि महर्षि रमण से, महर्षि मुझे अभी अभी फिर कृष्ण के दर्शन हुए पहाड़ी पर, फिर कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए मुझे। अब देखो महर्षि रमण क्या कहते हैं उससे, बोले तुमको बचपन से कृष्ण दर्शन दे रहा है, वो दर्शन देता है और गायब हो जाता है, इस तरह तो तुम्हारे मन की बेचैनी कभी खत्म ही नहीं होगी, इसलिए तुमको जो चीज बताई गई है अंदर प्रभु की, वो उपासना करो। ईश्वर रूप के वश में नहीं है, तब पुंज की समझ में आई कि बात तो ठीक कह रहे हैं। अब देखिए भाई, यही तो ऋषि का महत्व होता है, यही गुरु की ग्रेस होती है, यही गुरु कृपा होती है कि बुद्धि का पर्दा खुल जाता है। अब यहां सोचने को पहली बार मजबूर हुआ, ये बात तो ठीक कह रहे हैं, ये तो ईश्वर दर्शन नहीं है। तब जाके उन्होंने उस मार्ग को अपनाया जो महर्षि रमण ने अंतर साधना का बताया था। तो देखिए कि जितना घटनाक्रम घटता है, चाहे कर्म के रूप में चाहे भक्ति के रूप में, ये जो क्रियाकलाप है देह का, ये सब तारत के अधीन। जो घटनाक्रम घटना है आपकी बुद्धि वहां तक पहुंच भी नहीं सकती। अब देखिए पुंज को वह तिरुवनमलाई लाना, समझ नहीं, और पूर्ण गुरु से भेंट कराना जिसके पात्र थे वो, अरे ईश्वर मिलने की तड़प जिसके अंदर बचपन से ही बनी रहे, वो ईश्वर दर्शन का पात्र नहीं होगा क्या? तो राह उसने गलत पकड़ी हुई है, या अज्ञानता में जो भी दुनिया से समझा है उसने वो राह पकड़ ली उसने, लेकिन उसमें कोई चालाकी तो नहीं थी, कोई स्वार्थ तो नहीं था उसका, निष्काम भावना तो थी, ईश्वर दर्शन चाहिए था उसको। तो इस संसार की रचना, इस संसार की लीला यदि प्रभु नहीं कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो ये घटनाएं घटेंगी कैसे? ये घटना सिद्ध करती है मनुष्य की करनी है या ईश्वर की करनी है, और कितनी एग्जैक्ट करनी है, और कितनी सारी व्यवस्था की गई है, सोचिए वहां का, वहां तक पहुंचाना इनको कितनी व्यवस्था थी बीच में। तो यदि सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान वाणी कह रही है, तो क्या गलत कह रही है? और वाणी आगे भी कह रही है कि जो हो ना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाही। तिल मात्र भी यहां पर इतना सा भी उसके हुक्म के विरुद्ध कोई कार्य संसार में नहीं हो रहा है। आप कहोगे इतने राक्षस पैदा हो रहे हैं, इतने मारे जा रहे हैं, इतने पाप हो रहे हैं, तो ये प्रभु करा रहे हैं? हाँ भैया, जब पापी हैं उनकी सजा दिलाने के लिए ये रचना प्रभु को, वो भी रचनी पड़ेगी। रावण को मारने के लिए क्या रचना लीला नहीं की प्रभु ने, सीता को हरण नहीं करता तो रावण मारा जाता क्या? विचार करके देखो। तो जब हम उसको प्रभु का कार्य कह देते हैं तो उसको लीला कह देते हैं, हम जो स्वार्थवश होकर काम करते हैं तो हम अपनी करनी कह देते हैं। तो प्रभु की लीला निष्काम रूप में होती है और हमारी करनी सकाम रूप में होती है। इसलिए जिसका कर्ता बनके मैंने कर्म किया है, भले ही वो कर्म आपका प्रभु के हुक्म के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि लीला प्रभु की है, सारा जगत उसके हुक्म में चल रहा है, लेकिन मेरे अंदर कर्तापन है, मेरे अंदर भाव है कि मैंने किया है, तो उस कर्म का फल भी मैंने ही भुगतना है। वो कभी खत्म नहीं होगा जब तक आप भुगत नहीं लोगे। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कितनी मजबूरी है इस मनुष्य की, विचार करके देखो कि मेरे देह के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, मान लिया किसी का कत्ल भी हो रहा है, तो वो प्रभु हुक्म के अंतर्गत हो रहा है, मैंने नहीं किया वो कत्ल, लेकिन मुझको पता है मेरे अंदर स्वार्थ भावना थी और उसके वशीभूत होकर मैंने उसका मर्डर किया है, तो इसकी सजा आपको मिलेगी। तो विचार करके देखो इस मनुष्य के हाथ में है क्या, फिर तो सारी प्रकृति की करनी प्रभु करवा रहे हैं, तो मेरी क्या गलती है? मेरी गलती है, वो कहते हैं तू अपने अंदर से इच्छा का त्याग कर, बस इतना ही। तो प्रभु भक्ति इतनी ही है कि मैंने उस मार्ग पर चलकर अपनी इच्छा का त्याग करना है, मैंने इच्छा रहित होना है। अब तू बता, यदि तू इच्छा रहित हो गया तो इंद्रियों का क्या करेगा, तू मन का क्या करेगा? इसलिए जिसके अंदर भक्ति करते करते ये स्थिति आ जाती है कि अंदर से इच्छा रहित हो जाता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है कि इंद्रियां उसकी मन में प्रवेश कर जाती हैं, मन उसका प्राण में प्रवेश कर जाता है और प्राण उसका कुंडली में प्रवेश कर जाता है और वो कुंडली इस जीव को समाधि में ले जाती है। ये अंदर ही हो रहा है सबका, इसलिए वो प्रभु इस देह के अंदर मौजूद है। इसलिए कहते हैं गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। महाराज जी ने जब महामंत्र प्रकट किया 13 वर्ष की आयु में प्रकट हुआ, वो महाराज जी ने किया थोड़ा ना हुआ, वो ईश्वर हुक्म से हुआ, महाराज जी उस महामंत्र के रचनाकार नहीं है। और देखिए भगत जी ने कितने वर्षों बाद जो वाणी सारी ऑलमोस्ट प्रकट हो चुकी थी, तब भगत जी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी इस महामंत्र की क्या महिमा है? जब भी कोई वाणी हम लिखते हैं तो पहले कहते हैं महामंत्र लिखो, जब कोई सत्संग होता है तो कहते पहले महामंत्र उच्चारण करो, जब कोई अच्छा काम करना होता है तो कहते पहले 5 बार महामंत्र उच्चारण करो। उनके मन में प्रश्न आ गया तो महाराज जी से पूछ बैठे। तो महाराज जी उस समय सुबह को एक बार वो चाय लेते थे और एक बाल्टी पानी भगत जी लाते थे स्नान करने के लिए। तो महाराज जी के लिए जब चाय बना के लाए, स्नान करा चुके, महाराज जी बैठे, उसके बाद क्या होता था कि जो रात को वाणी अवतरित होती थी उसका शोधन जो है वो भगत जी पढ़ते थे, महाराज जी को सुनाते थे। कोई शोधन करना हो, कोई सब छूट गया तो महाराज जी उसको ठीक करवा देते थे। तो भगत जी लौट के आया तो महाराज जी ने एक पर्चा उनके आगे रख दिया, बोले बनारसी तो जो पूछ रहा था वो ये है। अब देखिए वो महामंत्र की वाणी पहले ही उसका जो है दोहा क्या कह रहा है, त्रयोदश अक्षर मंत्रिये सर्व सिद्धि दाता जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाया पार। सर्व सिद्धि दाता है, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। सब कुछ कब सिद्ध होता है? जब मनुष्य की अंदर से इच्छा ही खत्म हो जाती है, उस स्थिति को कहते हैं सर्व सिद्धि। हम उसके अर्थ क्या करते हैं वाणी के, इसको जाप करेंगे हमारी नौकरी लग जाएगी हमारे सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अरे जो मनोकामना तेरी बीमारी है तो अवतार लेके वो तेरी मनोकामना की बीमारी बढ़ाने आ गए, मनोकामना की बीमारी खत्म करने आएगा वो? विचार करके तो देख, जो गुरु है तेरी मनोकामना पूरी करेगा या मनोकामना एलिमिनेट करेगा? वो गुरु है या गुरु घंटाल है? वो तो इसीलिए जो आपको संसार से मुक्त करने आया है, संसार से उजाड़ने आया है, इसीलिए तो कहते हैं विधि का विधान। विधि का मतलब ही होता है संसार से डिसरप्ट करना, संसार से उसको उसके मन को उखाड़ देना। तो मन को आपके संसार से उखाड़ने आया है, आसक्ति को खत्म करने आया है ईश्वर गुरु रूप में। तो ये गुरु वही काम करेगा, इसलिए ऐसे गुरु के शिष्य ज्यादा कैसे हो सकते हैं? विचार करके तो देखो, जिसने आपके मन को संसार से उखाड़ ही देना है, तेरा मन संसार में लगेगा ही नहीं, ऐसे गुरु के शिष्य कितने होंगे? जरा विचार करके देखो। और जिनका गुरु संसार में मन को लगाने आया है लोगों के, उसके करोड़ों शिष्य होते हैं, लाखों शिष्य होते हैं, खूब माया चारों तरफ इकट्ठी होती है इनके। लोग कहते हैं ये है असली गुरु, के दो कितने शिष्य हैं इसके। अरे असली गुरु होगा तो उंगली पे गिनने लायक शिष्य होंगे उसके। महात्मा बुद्ध के उनके सामने कितने शिष्य थे? ईसा मसीह के उनके सामने कितने शिष्य थे आप फिजिकली उंगली पे काउंट कर सकते हैं। और आज सारी आधी दुनिया ईसा मसीह को मानती है, लेकिन कितने पाप कर रही है। तो मानना एक अलग बात होती है, जिस उद्देश्य के लिए उसका आना संसार में हुआ है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो मनुष्य जीता है वो उसका शिष्य है, उस सत्पुरुष का शिष्य वो है। तो इसीलिए ईश्वर को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन ईश्वर का जानता करोड़ों में कोई एक है। तो गुरु मैंने धारण किया है ईश्वर को जानने के लिए। ईश्वर को जानना तभी होता है जब पूरी माया से मेरे अंदर विरक्ति हो जाए। वो स्थिति मेरे अंदर आएगी ही आएगी, बिना उस स्थिति के मैं ईश्वर को जान ही नहीं सकता, क्योंकि जानना बाहर नहीं है, जाना अंदर है। और मैं यदि सिमरन करता हूं, मैं यदि प्रभु की भक्ति अंदर करता हूं, तो मुझको पता है सबसे बड़ी बाधा तो मेरे मन की है, संसार बाधक नहीं है, मेरा मन बाधक है। यदि मैं अपने एकांत कमरे में बैठ गया, यहां तपोभूमि में आके बैठ गया, मेरे लिए क्या बाधा, मैं तो अपने कमरे में ईश्वर का सिमरन कर सकता हूं। मुझको पता है मेरा मन ही मेरी 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 बाधा है। अब बताइए इससे लड़ने में तो आपकी बीवी सहायता करेगी, आपके बच्चे सहायता करेंगे, आपका फ्रेंड सहायता करेगा, कोई सहायता नहीं करेगा। इसमें यदि कोई सहायक है तो केवल गुरु है, बस। वो फिजिकली आपको उपलब्ध है चाहे नहीं है, ये काउंट नहीं करता। गुरु आज्ञा का पालन करना ही गुरु धारण करना है, याद रखो। गुरु आज्ञा का पालन करना ही गुरु धारण करना है। गुरु की शक्ल देखना, गुरु के पैर दबा देना गुरु धारण करना नहीं है, याद रखो। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। इसलिए महाजी के शिष्य भी जब फिजिकली उनके सामने होते थे और जो कभी पैर पकड़ के बैठ जाते थे दबाने के लिए, कोई कभी कंधा दबाना शुरू कर देता था, तो महाजी कहते थे, प्रेमी ये खल्लड़ तेरा गुरु नहीं है, इन्हें लकड़ियों को दबा के तुझे क्या मिलेगा। देखो उनके वर्ड्स क्या होते थे, जो पूर्ण गुरु है वो क्या बात करता है। और आजकल के गुरु देखो कितना सज धज के बैठते हैं और कितने राग रंग चारों तरफ उनके होते हैं, सारी जो है वो लीला होती है। कैसी हम कृष्ण लीलाएं देखते हैं संसार में, माया की लीला है वो कृष्ण लीला कह रहे हैं। तो लोगों की बुद्धि तो माया भी है ना, उन्हें तो भोग विलासी चाहिए, सुंदरता चाहिए, इंद्रियों के भोग चाहिए, तो ईश्वर को भी वैसे ही बना लेते हैं वो, ताकि उनके इंद्रिय भोग पूरे हो जाए। और महाराज जी सत्पुरुष के लक्षण क्या बता रहे हैं, मुंह पीला चित घनी उदासी, ये गुरु के लक्षण है। मुंह पीला चित घनी उदासी। और हम गुरु देखते हैं कि सेब जैसे लाल गाल हो रहे हैं, देखो तेज आ रहा है इसके चेहरे पर, ये ब्रह्म तेज है। ये संसारियों के गुरु हैं। तो महाराज की खुराक ही जब एक वक्त की चाय थी आधा लीटर दूध की बस सुबह की, तो शरीर पे मांस कहां से जमेगा, विचार करके तो देखो, वो तो हड्डी का ही पिंजड़ा होगा। तो संसारियों का गुरु और भक्तों का गुरु, जमीन और आसमान का अंतर है, दिन और रात का अंतर है। इसीलिए जब तक आपके अंदर अच्छे संस्कार नहीं है, गुरु मिलेगा कहां आपको। तो मैं किसी पूर्ण गुरु का आसरा लेकर, जिसका पता लग गया ये पूर्ण गुरु हुआ है, मान लिया किसी को पता लगा है कि नानक पूर्ण गुरु हुए हैं, तो पढ़ो उनकी वाणी, करो उनके जीवन की खोज, ओरिजिनल चीज पता लग जाएगी आपको। मिलावट भी बहुत कुछ हो जाती है बाद में, लेकिन ओरिजिनल चीज भी रहती है, मिल जाएगी आपको। रामकृष्ण परमहंस का जीवन देखो, महर्षि रमण का जीवन देखो, इनका जीवन संसार में सिद्ध हो चुका है कि ये पूर्ण गुरु है। महात्मा मंगत राम जी का जीवन देखो, उनकी वाणी प्रकट हो चुकी, समता विलास प्रकट हो चुका, शास्त्र की रचना वाणी अपने आप में सिद्ध करती है कि वो पूर्ण गुरु थे। अरे गुरु को, नानक को गुरु कौन सिद्ध कर रहा है, उनकी वाणी तो सिद्ध कर रही है। यदि वाणी नहीं होती है तो पता नहीं कहानी किससे तो कितने जोड़ लेते आप। तो जो प्रमाणित गुरु हैं, हुए हैं, मैंने उनके मार्गदर्शन को देखना है, वो पूर्ण मार्गदर्शन छोड़कर जाते हैं, इसलिए उनको जगत गुरु कहा जाता है। जगत का कहीं भी कोई भी मनुष्य है, यदि उस पर उसकी श्रद्धा आ जाए और उनकी खोज करे, वो उनके जीवन के अनुसार उनके मार्गदर्शन के अनुसार साधना करे, तो उस वहीं तक पहुंचेगा जहां तक गुरु पहुंचा था। तो गुरु अंतर्यामी है महाजी, इसलिए कहते थे प्रेमी सतगुरु तो अंतर्रमे, पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाठ उमार। अरे गुरु अंतर्यामी है, तेरा द्वार बंद है, तो द्वार खुलेगा कैसे? जब उसके अनुसार तू मंत्र जाप करेगा, उसके अनुसार संसार में परहेज करेगा, उसके अनुसार अपनी सोच को बदलेगा, अपने निश्चय को बदलेगा, तो तेरी अंदर की जो साधना है उस तेरे द्वार को खोल देगी, जिसको नाभि कहते हैं, नाभि चक्र कहते हैं, मणिपुर चक्र कहते हैं। वहां से अंतर्यामी उस ईश्वर का, अंतर्यामी गुरु का, जिसको कुंडलनी कहते हैं, उसका बोध होता है। फिर अंतर्यामी गुरु तुझको पकड़ लेता है, वह है तुझको आखिरी मंजिल तक पहुंचाने वाला। इसलिए महर्षि रमण कह रहे हैं कि गुरु, मंत्र, कुंडलनी, आत्मा एक ही चीज है। देखो ऋषियों की बात है, तो बड़े भाग से किसी ऐसा पूर्ण गुरु का पता लगता है इस धरती पर, बड़े भाग से उसके मंत्र का पता लगता है, बड़े भाग से उसकी वाणी का प्रभाव पता लगता है। यदि मैंने उसको अपना लिया तो मेरा मानव जन्म सफल है, मैं उस ईश्वर के अंतर्यामी ईश्वर के दर्शन करके मुक्त होऊंगा ही होऊंगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। ये देह से वो कार्य पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु ज्ञान आपको सिखा रहा है तू देह नहीं है, तू जीव है। इस देह की मृत्यु होती है तो तेरी मन, तेरी इंद्रियां सब वही संस्कार, वही कर्मफल लेकर उसी ईश्वर में प्रवेश करती है, और उसी ईश्वर से तेरा नया संसार, नई देह तैयार हो जाती है तेरे ही कर्मों के अनुसार, तेरे ही संस्कारों के अनुसार। और तूने इस जन्म में भक्ति की है तो भक्ति ऐसी चीज है जहां खत्म की है वहीं से शुरू होगी। इसलिए अर्जुन जब पूछता है कृष्ण से कि वासुदेव इस जन्म में भक्ति तो की, लेकिन पूर्णता ही प्राप्त होने से पहले ही यदि मैं या कोई भक्त जो है वो मर गया तो कहीं बादलों की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता वो? तो कृष्ण कहते हैं कि उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। तो इस देह का भी तो योगक्षेम वही वहन कर रहे हैं। प्रार्थ क्या है? ये प्रार्थ के अनुसार देह को मैं चला रहा हूं या वो चला रहे हैं? मैं संसार के काम कर रहा हूं, मैं श्वास लेने का होश है मुझे, दिल धड़काने का होश है मुझे, देह का इतना अहंकार ये होश ही नहीं है? देह को तो मैं कुछ देखा तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, इसको तो भूले बैठूंगा हूं, मैं तो काम कर रहा हूं और देह को अंतर्यामी प्रभु चला रहा हूं। तो मुझे अपनी इतनी सी करने का इतना अहंकार और प्रभु की इतनी करने का कोई इसका याद ही नहीं उसकी, तो ऐसी मेरी संसारिक कुबुद्धि है, इसको कुबुद्धि कहेंगे। और क्या, जो जो सारे जगत का मालिक है, सारे जगत को चला रहा है तेरे लिए, ये तो जिंदा रह पाएगा? सूर्य चमकना बंद कर दे तो जिंदा रह पाएगा? कोई वनस्पति पैदा होगी? तो ईश्वर की तो करनी तो ये याद ही नहीं, अपनी करनी का इतना अहंकार। इसलिए जैसे जैसे ईश्वर की याद आती है, उसकी करनी याद आती है, सत्पुरुषों के जीवन का पता लगता है, उनकी बातों का मुझे बोध होता है, वैसे वैसे मेरा अहंकार टूटता जाता है, टूटता जाता है, टूटता जाता है, और प्रभु की याद बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो अंतर साधना यदि गुरु के अनुसार की मैंने, तो अंतर्यामी प्रभु के दर्शन होते हैं, तब समझ में आता है सब जग रूप ब्रह्म का भेद भ्रम ना को। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व।